फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर है 905-279-4754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड मिसिसागा।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री। डेंटिस्ट्री ऑन मिसिसागा।
Grill in the Hut, Mississauga mein, open for takeout only. Order via phone. Imran bhai ko call kare.
Intahai laziz biryani khana ho ya phir kadai khana ho ya phir steaks ko enjoy karna hai, to aap order place kijiye 905-405-8383. Grill in the Hut.
The fastest 4K IP box in Canada with 5G latest technology. More than 4,000 channels, English, Hindi, Urdu, Punjabi, all latest movies, drama series, sports, kids section, and religious channel. Take this 5G IP box anywhere in the world. For more details, call 647-219-2580. 647-219-2580.
हिप से डेंटल कवरेज नहीं, मगर साहब आप परेशान मत होइएगा, डॉक्टर फियाज कुरैशी अब दो क्लिनिक से आपको सर्विस देते हैं, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है। तमाम डेंटल ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, रूट केनाल, ऑर्थोडॉन्टिक्स ट्रीटमेंट है, ब्रेसिस है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन है, तो बस सिर्फ एक ही नाम, डॉक्टर फियाज कुरैशी, मिसेस सागर और स्कारब्रो। आप अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट बनाइए, खवातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम और फीमेल डेंटिस्ट। 9052325678 2325678, डॉक्टर फियाज कुरैशी।
थर्डे जाने पहचाने राजा या फिर जस, ट्रक भी बेहतरीन क्वालिटी सर्विस से नाल फिर वारंटी, अकाल ट्रक एंड ल्यूब,
ड्राइव थ्रू,
अकाल ट्रक एंड ल्यूब,
ट्रक वॉश,
अकाल ट्रक एंड ल्यूब,
रिपेयर,
अकाल ट्रक एंड ल्यूब,
टायर सर्विस,
अकाल ट्रक एंड ल्यूब।
Call Jess O. Raja, 905-565-1100.
1776 Myerside Drive in Mississauga, a car, truck and Dube.
Pizzas Bros and Wings, 6th location to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yaho, Mississauga. Fresh aur mazedar pizzas ki variety. Ya order karna ho apna manpasand custom made pizza. Iske alawa pizza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out call 905-789-8838, 905-789-8838, www.pizzapros.ca.
जी साहब, धन 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 धन। ही लीजिए साहब, आप तैयार हैं? आप लोग, हम तो तैयार हैं। मेरे सामने एक शख्सियत बैठी है, वो भी तैयार हैं, एकदम 100% तैयार बैठी हैं। वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के साथ हम ले आए हैं शाज़िब मलिक जी को। शाज़िब जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
अस्सलाम भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या हो रहा है? देखें, यूरोपियन यूनियन कितनी इम्प्रेस हो गई है पाकिस्तान से।
पाकिस्तान से इम्प्रेस?
पूरी यूरोपियन यूनियन इतनी इम्प्रेस्ड है।
अब उनको चाहिए कि वो यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान को डाल दें।
हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान क्रिएट कर लें उसमें।
हाँ जी, वो कहते हैं हम जी आपसे इतने इम्प्रेस हैं कि आपको हम इनवाइट करते हैं कि आप हम टर्की को नहीं लेंगे।
नहीं, यूरोपियन यूनियन के एंड हार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन आप एक पाकिस्तान बना लें छोटा सा।
हाँ जी, आप हम टर्की को नहीं लेंगे,
नहीं
हम आपको ले लेंगे,
आपको ले लेंगे। मैं भाई इतने इम्प्रेस हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में तो कोई कोरोना से कोई इतना मारी मारी चल नहीं रही।
हाँ जी,
जितनी के यूरोपियन यूनियन में चल रही है। तो अब पूरे यूरोपियन यूनियन ने फैसला किया है कि वो दूध में पानी डाल के इस्तेमाल करेंगे, लाल मिर्चें जो है उसमें लाल इंडे मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे, और जो है दवाइयां जो है वो दो नंबर यूज करेंगे। ये सारा ये जो है ये वादा कर लिया,
मतलब इम्यून सिस्टम सही हो जाएगा।
हाँ, इम्यून सिस्टम, वो कहते हैं ये हमने अब ये क्लीन एयर क्लीन वाटर
ये वैक्सीन वगैरह जो है ना, ये आप आर्टिफिशियल दे रहे हैं,
ये आर्टिफिशियल दे रहे हैं
हमारे खून में। तो ये है कि
गंदा पानी पिए
साहब, हमको अगर एक सांप ने काटा सांप मर जाता है,
मर जाता है।
हमको अगर पागल कुत्ते ने काटा तो कुत्ता मर गया,
मर गया,
हम चलते फिरते रहे।
बिल्कुल, देख इतनी इम्प्रेस है दुनिया हमारे से ना। तो इसी तरह एक बाबा
डॉक्यूमेंट्रीज हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आप अगर उन डॉक्यूमेंट्रीज तो देखें, यूट्यूब पे पड़ी हुई है सारी डॉक्यूमेंट्रीज। कि आप सिंध में जाएं तो वहां पर जो है बड़े जहरीले सांप होते हैं। आप यकीन करें, ये कोई 10-10, 12-12, 14-14 साल के बच्चे हैं जो जाके उनको बेयर हैंड, हाथ में कुछ भी नहीं है उनके, वो उसी तरह पकड़ लेते हैं वो। आई मीन दैट इज, और उस पर बाइट भी होता है उनको, सब कुछ होता है, मगर वो सही कर लेते हैं उसका, उसी के जहर से, उसी के जहर से सही करते हैं।
हाँ, जी, 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 जी,
बाबा जी का किस्सा सुना रही थी आप।
بابا جی جو ہے نا, بابا جی کے پاس ایک ہمارا معصوم پاکستانی بیٹھا تھا نا, پاکستانی معصوم تو بہت ہے, خاص طور پہ مرد جو ہیں بہت معصوم ہیں, معصوم ہیں. تو وہ ایک معصوم مرد بیٹھا ہوا تھا نا, بڑا اداس بابا جی کے پاس, کہتا ہے بابا جی یہ ایک لڑکی سے مجھے پیار ہو گیا ہے لیکن وہ کوئی میرے جھانسے میں آ نہیں رہی.
اچھا,
تو وہ مطلب پٹ نہیں رہی میرے ذہن, میں پٹا نہیں سک رہا اس کو. تو بابا جی نے کہا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے, تم ان کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کیا کرو. کہتا ہے اچھا, تو چکنی چپڑی باتیں کرنے کے لیے گھی کون سا استعمال کرنا. پھر اس نے, ہاں بالکل دیکھ لیں آپ. تو پھر بابا جی کو کہتا ہے, کہتا ہے بابا جی نے کہا کہ, پھر کہنے لگا کہ وہ لڑکی ایسی ہے ایسی ہے. بابا جی کہتے ہیں یہ بہت بری بات ہے, اب تم اسے پیار بھی کرتے ہو اور اس کی باتیں بھی بتا رہے ہو. یہ تمہیں کسی بڑے نے بتایا, بزرگ نے, کہ اگلے کے جو راز ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے؟ تو اللہ بھی ڈالتا ہے. کہتا ہے اچھا بابا جی, اگر پردہ ڈالنا ہو تو کتنے میٹر کا اور کتنا. دیکھ لیں معصومیت آپ پاکستانی کی مائز بھائی,
آپ دیکھ لیں نا, مطلب وہ واقعی میں معصوم ہے,
معصوم ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. لیکن پاکستان ماشاءاللہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ ہے
انشاءاللہ.
جو آج بھی جو رپورٹس آئی ہیں کچھ جو ہیں, وہ میں ساری رپورٹس تو یہاں پہ نہیں کر سکتی, لیکن اکارڈنگ ٹو دیٹ بہت ساری ملٹی نیشنلز جو ہیں پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں. سی پیک کے اندر جو انرجی کے کچھ پروجیکٹس تھے, 22 پروجیکٹس تھے, اس میں سے 9 کمپلیٹ ہو چکے ہیں.
اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے دے دو, میں آپ کو دیکھو پاکستان کو کیا بتا دوں گا.
ہاں, یہ ایک میں پوری ماجد بھائی جو ہے, یہ سر جارج کننگہم تھے جو انگلینڈ سے آئے تھے انڈیا کے اندر, اور بڑی ریسرچ کر کے گئے تھے کہ جیسے بڑے اور شیطانی کارخانے چھوڑ کر گئے نا گورے اس علاقے کے اندر, کشمیر کا مسئلہ چھوڑا اور چھوڑا,
مولانا کو بھی چھوڑ
گئے, ملہ کیسے پیدا کیے انہوں نے, ملہ کیسے پیدا کیے,
مولانا کو بھی چھوڑ گئے.
اینڈ دس از فرام دا ڈائریز آف سر جارج کننگہم.
اب یہ میں بات کہہ کے تھک گیا ہوں
جی, تو وہ میں کسی دن, میں ویسے آپ کی بات کر رہی ہوں, سوری, میں کسی دن یہ پوری ان کی ڈائری کی جو ہے نا, جو چیزیں ابھی سامنے پبلش ہوئی ہیں انگلینڈ کے اندر, یہ میں انشاءاللہ یہاں پہ اپنے جاننے والوں کو بتاؤں گی کہ ان مولویوں کی کو کیسے برٹش امپائر نے کریٹ کیا اور ان کی ہسٹری کیا ہے, میں بتاؤں گی. ہاں جی,
اٹ از دیر. اب یہ بتائیں نا کہ آپ کے یہ اتنی بڑی بڑی پارٹیاں چلا رہے ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے, آج تک انہوں نے کہیں پر کسی کے لیے کام نہیں کیا.
پہا کہاں سے آ رہا ہے, یہ
کہاں سے آ رہا ہے,
سب سے تو بڑی بات,
بڑی اسمال سی وہ کوشچن ہے, یہ بڑا آسان سوال ہے جو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا,
پہا کہاں سے آ رہا ہے,
پہ کہاں سے آ رہے ہیں.
بالکل دیکھیں مجھ بھائی, ان کے بیچ میں, اور آپ دیکھیں, آئی ایم ناٹ ریلی انڈورسنگ حزب اللہ, آئی ایم ناٹ انڈورسنگ ایٹ آل, لیکن حزب اللہ میں اور ان میں یہی ڈفرنس ہے, اسی لیے لیبنان کے جو کرسچنز بھی ہیں وہ بھی حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں,
کیونکہ وہ کام کرتے ہیں.
ماجد بھائی, انہوں نے اسکول بنائے ہیں, مدرسے نہیں بنائے انہوں نے, اسکول بنائے ہیں, ڈسپنسریاں بنائی ہیں, روڈیں بنائی ہیں, جن بچوں کے پاس جابز نہیں تھے ان کو جابز لے کر دیے ہیں. حزب اللہ کا جو ہیڈ تھا, یہ نہیں کہ ماجد جمال اپنے بچوں کو بولو جا کے جہاد کرے اور میرا بچہ تو یہاں پہ جو یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں پڑھے گا, نہیں, حزب اللہ کے جو ہیڈ تھے ان کا خود کا بیٹا جو تھا اس نے جہاد کیا اور اس کی ڈیتھ ہوئی, شہید ہوئے وہ اس کے اندر. تو اس لیے جو ہے ان لوگوں کی اتنی جو ہے,
ہمارے جو حضرات ہیں تو وہ ان کے بچے تو امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں,
اور کام بھی کوئی ان کے کوئی اتنے ٹھیک نہیں ہے, سود کے کاروبار کرتے ہیں.
نہیں نہیں, تو مگر یہ کہ وہ ایک بچے کی تعلیم اگر امریکہ میں دلانی ہے آپ
جی جی, وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے,
کتنا پیسہ لگتا ہے
جی 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 جی,
تو وہ ساری چیزیں, اور پھر ان کو کافر کہہ کے ان کو برا بھلا بھی کہنا ہے,
صرف
دکھاوے کے لیے, جسٹ فار دکھاوا, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ صرف دکھاوا ہے کہ ان کو کہہ دینا کہ بھئی یہ کافر لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہے ان پہ یقین نہ کریں آپ. آپ نے تو اپنے بچوں کو یہاں پڑھو, اور میں کسی ایک شخص کی نہیں,
نہیں نہیں,
پوری کی پوری جو ان کی گینگ ہے.
یس ایبسولیوٹلی, آپ نے یہ ورڈ صحیح یوز کیا, گینگ, دے آر اے گینگ, یس
آف کورس,
اینڈ دے آر بلنگ پاکستانیز, پڑھے لکھے پاکستانیوں کو یہ بلی کرتے ہیں.
Exactly.
بلی کرتے ہیں, ایبسولیوٹلی, یہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں مجید بھائی, اور آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی, اور اسی لیے میں بڑی دعا کرتی ہوں, ہو سکتا ہے لوگ, پیپل کین ہیٹ می فار دس, بٹ دیٹس وٹ آئی وانٹ فار مائی کنٹری, کہ کوئی عطا ترک جیسا آنا ہی چاہیے اس ملک میں بھی, جو کہ پوچھے ان سے,
ضروری ہے,
جو ان سے پوچھے کہ تمہارا کنٹریبیوشن کیا ہے اس ملک کی ترقی کے اندر. तुम क्या कर रहे हो सिवाय फनेटिक्स बनाने के इस मुल्क
कर नहीं रहे हो
हाँ.
क्या किया है तुमने पिछले 30 सालों में?
यस दैट्स राइट
लास्ट 30 ईयर्स.
चलो 70 ईयर्स तो हम नहीं पूछते हैं, 30 ईयर्स पूछते हैं
ना. 30 ईयर्स के तो सेम लीडर्स हैं ना. यही लीडर्स पिछले 30 सालों से आप देख रहे तो यही शक्लें हैं. तो आपने पिछले 30 सालों में क्या किया है पाकिस्तान के लिए ये बता दें.
आपने कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई यूनिवर्सिटी खोली है?
कुछ किया.
कोई कहीं सड़क बनाई है, ब्रिज बनाया है, क्या किया आपने?
उनको छोड़े कोई हॉस्पिटल्स बनाए आपने?
यस एब्सोल्युटली.
जो लोगों के आम लोगों के मफाद के लिए आपने क्या किया है? सिर्फ इसके कि भाई मैंने इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस निकाल देने, मारपीट करवानी है और तोड़ फोड़ करवानी है,
फनाटिसिज्म फैलानी है, क्रिएट करना है.
एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डू.
तो इसकी मजहब में कहां पे इजाजत है माजिद भाई? यहाँ मजहब की कहां पे इजाजत है?
मजहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है.
हाँ और आप देखें कि हमको किसको फॉलो करना चाहिए कि हमारी कौम भी इतनी जाहिल है, सॉरी टू से दिस, कि उनको जो इस्लाम लाए हैं रसूल खुदा उनको फॉलो करना चाहिए कि इन मौलवियों को फॉलो करना चाहिए? किसको करना चाहिए?
मौलवी भी, मौलवी जब हम मौलवी कहते थे ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मौलवी खराब है.
नहीं ये तो नहीं हम कह रहे.
नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ,
जनरल मुल्ला
मौलवी. हाँ मौलवियों का जब नाम लेते हैं हम तो ये हम ये नहीं कह रहे कि बे इंतहा ऐसे अच्छे मौलाना हजरात हैं जो दीन की तालीम दे रहे हैं.
यस
देते रहे उनका काम है, उनको दे जरूर दे.
भाई मैं तो हमेशा मजहब के
बगैर, उनके बगैर हमारे बच्चे कुरान और अहादीस और ये इस्लामी तालीमात नहीं हासिल कर सकते. तो वो जब दे रहे हैं तो मौलाना हजरात दे, उनमें अच्छे लोग हैं, वो
अच्छे भी
दीन का काम कर रहे हैं. मगर ये जो कुछ हजरात है ना जो लीडर हजरात बने हुए हैं उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है.
बस लेबल लेबलिंग के चक्कर में है. ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये अहमदी है, ये फलाना है, इसको साथ ये नहीं करना, ये नहीं करना. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट सरमन आप सुने, किसी गोरे को काले पे, काले पे, यानी उनका कहने का मतलब है किसी को किसी पे, अनलेस कोई सबकत नहीं है, अनलेस
अरब को अजम पे, अजम अरब को किसी.
हाँ तो अजम कौन है? अजम कौन है? हैं जी चलो अरब्स तो हम थोड़े से समझ सकते हैं कि जी अरब्स तो शायद मुसलमान थे उस वक्त, क्रिश्चियंस भी बेशुमार थे और काफर भी थे उस वक्त वहां पे, लेकिन अजम कौन है? अजम तो बिल्कुल ही मतलब नॉन बिलीवर्स है ना, इनफिडल्स हैं राइट. वेस्ट से यानी जिनका ताल्लुक हो सकता है उनको आप अजम कंसिडर कर सकते हैं. तो अगर अरब को अजम पे और अजम को अरब पे कोई फकीयत नहीं है, फकीयत किस चीज पे? एक चीज पे, आपके तकवे के ऊपर, तकवे के ऊपर. और तकवे का मतलब ये नहीं है कि आपने लंबी दाढ़ी रखी हुई और पेट फैलाया हुआ है और आप दूसरों के बच्चों को कह रहे हो तुम जिहाद करो मेरा बच्चा ना करे. ये दैट इज नॉट तकवा.
सही
राइट. तकवे की तो हमें सबको पता है ना कि क्या एक जो है वो दी हुई है. तो अगर उस लास्ट सरमन पे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनके उसके ऊपर हम अमल करें तो हमको तो उस पर अमल करना चाहिए ना माजिद भाई.
ठीक
है हमको उस पर अमल करना चाहिए. तो हमको प्रीच अपने मुल्क में क्या करना चाहिए कि भाई रसूल की जिंदगी पे चलो, मत सुनो इन मौलवियों को, मत सुनो रसूल के ऊपर. तो इसीलिए फिर आप अगर उनकी जिंदगी पे चलेंगे ना आप पीसफुल भी होंगे, आप लोगों की रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपके अंदर टॉलरेंस भी होएगा
रिगार्डलेस ऑफ कलर रेस एंड रिलीजन.
हाँ बिल्कुल. तो फिर
इंसानियत हमारा क्या सिखाता है? नॉट ओनली मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ इस्लाम नहीं, हर दीन इंसानियत सिखाता है.
हर दीन सिखाता है जी, हर दीन सिखाता है.
और हर दीन में ऐसे लोग हैं जो अपने दीन को अच्छा समझ के बाकियों को सारों को
कंडेम करते हैं,
हर दीन में. तो वो दे आर प्रोफेशनल्स क्योंकि उनका काम ही यही है, क्योंकि इनकी उनका खाना पीना इसी वजह से चलता है.
तो मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के माजिद भाई कि जो चीजें रसूल ने हमको दी हमने नहीं उनको फॉलो किया, अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों ने नहीं फॉलो किया, उसको वेस्ट ने फॉलो किया.
yes.
आप देखें ये लोग जो हैं इनके अंदर कितनी इंसानियत है, कोई भेदभाव नहीं करते आपके अंदर. आपको इसलिए जॉब से नहीं निकालेंगे कि योर नेम इज अब्दुल माजिद कुरैशी और मैंने किसी गोरे को रखना है. नहीं कभी भी नहीं ऐसे करेंगे माजिद भाई. इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट का हेड एक इंडियन है, याहू का हेड एक इंडियन है, वरना वो कहते भाई हम क्यों रखें इन इंडियंस को, ये हमसे ज्यादा लायक है. हमारी अमेरिकन कंपनियां हम इनके कोई अमेरिकन हेड्स रखेंगे या कोई यूरोपियन हेड्स रखेंगे? नो. काबिलियत टैलेंट कोई भेदभाव नहीं है रंग नस्ल का कि तुम काले हो गोरे हो. तो ये चीजें हमारे मजहब की थी जो हमको फॉलो करनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने छोड़ दी और उन्होंने पकड़ ली.
और हम अभी तक अपने आपस में लड़ रहे हैं.
हाँ आपस में. मुस्लिम कंट्रीज देख लें, यमन के ऊपर बम्बार्डमेंट है, सऊदी पाकिस्तान से नाराज हो जाता है कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो दूसरे मुस्लिम मुल्क को तबाह करने के लिए, राइट? तुम मेरा साथ दो कि दूसरे हमने मुस्लिम मुल्क को बर्बाद करना है। भाई ये किधर का इस्लाम है, ये कौन से रसूल खुदा ने कहां सिखाया है, ये किधर हमारा मजहब, ये मारा मारी और ये वेपन्स उठाना कहां सिखाता है? और आप देखें कितनी इन्होंने गलत पिक्चर मुसलमानों की और इस्लाम की पेश की हुई है कि लोग जो हैं, ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूं, आई डोंट वांट टू नेम सम ऑफ द बॉयज जो कि मेरे बच्चे के फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं हमें अब शर्म आती है यूनिवर्सिटियों में जाके बताते हुए कि हम मुसलमान हैं। लोग हमें इतनी नफरत की निगाह से देखते हैं कि ये तुमने सारी दुनिया में क्या ये टेररिज्म फैलाया हुआ।
मगर देन अगेन, देन लेट मी आंसर यू अबाउट दिस। अगर कोई मुझको देखकर मेरी पर्सनालिटी को, मैं आपसे मिलता हूँ रोजाना, मैं 50 लोगों से, दूसरे लोगों से मिलता हूँ, कोई बड़ी कंपनी में काम करो तो वहां पर 100, 200, 250 लोगों से रोजाना मुलाकात होती है। अगर वो मुझे देख के मेरी डीलिंग की वजह से मुझसे फिर पूछें कि भाई यार आप व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, यू आर सच अ ऑनेस्ट पर्सन, देन वी हैव टू, यू एंड आई हैव टू प्रूव आर सेल्फ।
जी, तो हमको हमको ज्यादा फिर जोर लगाना पड़ता है ना माजिद भाई, फिर कुछ इंडिविजुअल्स को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है अपने आप को बताने के लिए कि नहीं मुसलमान अच्छे लोग हैं, मुसलमान बहुत अच्छे लोग हैं, ये कुछ है हमारे अंदर जो शैतान है।
मगर कुछ तो हर एक में शैतान है ना, कुछ तो हर मजहब में कोई शैतान लोग हैं, ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, हर मजहब में। अब इंडिया, यहां पर अमेरिका में देख लें, जो टेररिज्म दुनिया भर में टेररिज्म हो रहा है, तो वो एक तरफ ये समझते हैं कि टेररिस्ट जो है वो मुसलमान है, मगर अमेरिका में जितना टेररिज्म हुआ है, अगर सिर्फ एक साल का ले लें आप, तो 2020 का, 2020 में तो मेजॉरिटी ऑफ द टेररिज्म आर लोकल टेररिस्ट,
डोमेस्टिक टेररिस्ट,
डोमेस्टिक टेररिस्ट, और वो उनका भी कोई रिलीजन नहीं है। हाँ, वो ये नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है, मगर इसके अलावा दे कुड बी क्रिश्चियन, दे कुड बी ज्यूज, दे कुड बी एनी बारी। तो ये कहना कि भाई सिर्फ मुसलमान ऐसे, नहीं नहीं नहीं, एवरीबॉडी, हर मजहब में, हर कलर में, हर रेस में अच्छे और बुरे लोग होते हैं।
लेकिन ओवरवेलमिंगली चूंकि मुस्लिम्स का नाम आता है ना,
नहीं नहीं, तो मुस्लिम का नाम इसलिए आता है कि वो मीडिया सर्टन लोगों के हाथ में है, और वो सर्टन लोग जो हैं वो इसको आग लगाने के चक्कर में है। अदर देन दैट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नोज अबाउट इट, लाइक यू नो मी एंड माई फ्रेंड्स, माई गोल्फिंग बडीज, जो मेरे गोल्फिंग बडीज हैं, दे ऑल नॉन मुस्लिम्स, उसमें यहूदी भी है, उसमें काला भी है, उसमें इटालियंस भी है, उसमें पोर्चुगीज भी है, हम लोग जो है, हमारे जो फ्रेंड्स थे, तो हम जो है हम आपस में करते थे, यस यू द टेररिस्ट, यस आई एम द टेररिस्ट, मगर ये हम मजाक में ना आपस में करते थे ना, क्योंकि वो इसमें कोई वो बात नहीं थी कि कोई मतलब दिल से कोई उनको पता है कि मैं किसका, कि आई एम नॉट द वन हु इज गोना टेक आउट द बॉम्ब एंड थ्रो इट इन समबॉडी, है ना, मगर मजाक में हम ये बात भी कहेंगे। तो ये चीजें ना लोगों को, ये कभी भी हमको बैक नहीं जाना चाहिए अपनी कि भाई ओ या आई एम अ मुस्लिम। तो जहां पे जैसे भी अभी यहां पर रेडियो पे देख लें आप कि जब भी कहीं पर बम का धमाका होता है तो लोग हमें कॉल कर करके पूछते रहते हैं कि आपको पता लगा नाम कौन है, किसका है। तो मैं लोगों से कहता हूं व्हाई आर यू वरीड, कि वो अगर मुसलमान है या क्रिश्चियन है या यहूदी है या हिंदू है या सरदार है, इट डजंट रियली मैटर, दैट इज वन पर्सन,
पूरी कम्युनिटी को आप लेबल नहीं उसके लिए,
आप उसके लिए ये मत आप डरे ना कि ये वो उसका नाम अब्दुल माजिद जमाल है जी, उस जिसने बम फेंका है, सो व्हाट, ही इज वन इंडिविजुअल, ही इज अ कैनेडियन, एंड वो कैनेडियन जो है अकॉर्डिंग टू कैनेडियन लॉ उसको सजा दी जाएगी, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो उसमें आपको कभी अपना गिल्टी नहीं फील करना चाहिए कि यार किसी मुसलमान ने ये कर दिया, या क्रिश्चियन, कभी जो क्रिश्चियंस करते हैं तो वो क्या वो डरते हैं कि वो अब सारे पूरे क्रिश्चियंस को लेबल कर देंगे? नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अमेरिका में जो टेररिज्म हुआ है, आप किसी एक साल को उठा के देख ले, मेजॉरिटी ऑफ द टेररिस्ट आर लोकल टेररिस्ट।
और माजिद भाई यूरोप की तो हिस्ट्री है, हॉलोकॉस्ट की हिस्ट्री है,
हॉलोकॉस्ट हर जगह की है, हर जगह की है, नॉट टू वरी अबाउट इट, नॉट टू वरी अबाउट इट।
जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, आप हम आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे जाएं eawaz.com, उस पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीजें नजर आती हैं। अभी थोड़ी सी अंडर रेनोवेशन है, थोड़ी सी
अंडर रेनोवेशन,
अंडर इसीलिए मैंने जरा ज्यादा जोर दिया है।
हाँ जी,
हाँ जी, रेनोवेशन है, तो कुछ अच्छी चीजें उसके ऊपर आ जाएंगी, तो आपको जरा वो हमारी वेबसाइट अच्छी नजर आने लगेगी। और इसके अलावा आपको हमारे वहां पे स्पॉन्सर्स नजर आएंगे, तो जब आपको नजर आए तो प्लीज आप उनको उनके नंबर्स नोट करें और उनको आप जरूर सपोर्ट करें. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी अब जो है हमारे साथ जैसे 770 पे अपना एड रन कर रही है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस को. तो ये सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं हमारे, जो ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और ये सब, तो आप इनको प्लीज जरूर सपोर्ट करें. अच्छा जी, हमारे पहले स्पॉन्सर हैं ब्रोस्टेड चिकन अल बेक स्टाइल, और ये हैं 1758 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट स्कारबरो में. इनका नंबर है 6477483444. ये कहते हैं जी हम दुनिया के सबसे बेस्ट स्पाइसी फिश जो है बर्गर्स बनाते हैं, और इसके अलावा बेस्ट जीटीए के सैंडविचेस हम लोग बनाते हैं. तो आप इनसे खाना मंगवा सकते हैं थ्रू स्किप द डिशेज, डोर डैश, उबर ईट्स एंड हॉट स्टार. एनुअल सब्सक्रिप्शन ओनली इन $45. अगर आप ई आवाज जो है यूज करेंगे प्रोमो कोड, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं ऑन hotstar.com/CA. बहुत सारा पंजाबी कंटेंट है, क्रिकेट का सीजन पूरा आप देख सकते हैं, मूवीज हैं और खबरें हैं बहुत डिफरेंट किस्म की. और जनाब अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आपको शाह अहमद साहब के पास रेक्सडेल होंडे पे जाना पड़ेगा. तो इनका नंबर है 4168172720, और ये नैव भाटिया के बड़े ही पुराने इनकी जो है डीलरशिप पे हैं, तो आपको बहुत अच्छी डील ये दे सकते हैं. और रिजूना जनाब आप जरूर यूज करें अगर आपको कोई भी कमी महसूस हो रही है. ये बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाइयां हैं और इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. मैंने खुद बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं एंड दे आर वंडरफुल. तो आप इनको जरूर इनको विजिट करें, और इनका नंबर है 9057907734.
जी साहब, अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं. जी शाजिद जी,
माय भाई आप मुझे वैसे ये बताएं, आपने कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लिए हैं?
नो.
आपको जरूर लेने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. क्योंकि ये लोग
मुझे याद नहीं है,
जड़ी बूटियों से बनाते हैं ना चीजें, तो इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है.
अच्छा,
तो ये जैसे हमारे पुराने हकीम बनाते थे ना, हिकमत जी थी जिनके पास, तो इसी तरह इन लोगों के पास भी आयुर्वेद जो है ये भी बहुत अच्छी जो है वो अल्टरनेटिव साइंस है, और बहुत आपको फायदा बहुत पहुंचाती है ये. हाँ, वो जैसे फॉर एग्जांपल जिनको के माइग्रेन होता है, तो वो एक उनका इलाज होता है धारा, तो वो गर्म ऑयल जो है आपका एक इधर ऐसे इसमें ना दिमाग के अंदर इस पे माथे पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर वो हॉट ऑयल डालते हैं और इस तरह मतलब इस तरह के इलाज करते हैं ये लोग आयुर्वेद वाले. और फिर इस तरह की कुछ दवाइयां होती हैं उनकी जड़ी बूटियों की, तो वो इस तरह की कुछ देते हैं, तो दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स. और वो बहुत आपके वो एग्जैक्टली जो चीज जिसको उसने क्लिक करना होता है ना उसको वो करता है, उसी को ठीक करता है. ये नहीं कि कीमोथेरेपी की तरह सारे सेल मार दिए, कैंसर सेल भी मार दिए, बाकी भी मार दिए, नहीं ऐसे नहीं है. तो इट्स वेरी नाइस ऑल्टरनेटिव मेडिकल जो है सिस्टम है, तो आप कर सकते हैं. अच्छा जी, आज की जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि अब एस्ट्राजेनेका जो है उसकी भी हमको डोजेज आनी शुरू हो जाएंगी यहां पे. और लेकिन माजिद भाई जो कनेडियन जो कंपनी है ना, सॉरी कनेडियन जो मेडिकल एसोसिएशन है ना, उसका थोड़ा सा कंसर्न आ गया है एस्ट्राजेनेका के बारे में. वो कहते हैं कि ये आप 65 एंड अबव को नहीं दे सकते हैं ये दवाई. और आपको
ये,
पता
ये,
है
ये हमने नहीं कहा ये.
जी
ये फ्रांस के एक जो वो है ना, उन्होंने कहा है कि ये जो है 65 से ऊपर नहीं दे सकते. हालांकि एस्ट्राजेनेका का कहना ये है कि यस यू कैन गिव ओवर 65, यस यू कैन गिव ऑल, हाँ 18 साल से ऊपर के बच्चों को नहीं दे सकते, लोगों को नहीं दे सकते आप. उसके लिए उन्होंने दूसरी दवाई निकाली भी है.
ठीक है, ठीक है, ओके. तो ये इस तरह से ना कुछ कंसर्न्स कनाडा के अंदर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये अब कहा जा रहा है कि एज अर्ली एज वेंसडे को ये आ जाएगा.
सही?
तो हमारे पास ये आ जाएंगी, तो अब बहुत सारी हो जाएंगी. तो इसीलिए अब जो है सारे प्रोविंसेस जो हैं वो बहुत रैंप अप कर रहे हैं अपनी एफर्ट्स जो है कि क्विकली जो है अब ये चूंकि बहुत सारी डोजेस आना शुरू हो गई हैं एंड देर आर इनफ. तो
एंड उसके बाद जो शाहजी जी जो मेन है ना वो ये कि जॉनसन जॉनसन की जो अप्रूव होने जा रही है नेक्स्ट वीक तक.
जी
नेक्स्ट वीक तक अगर जॉनसन जॉनसन की अप्रूव हो जाए तो उसमें अच्छी बात यह है कि उसको वेरी रेगुलर टेम्परेचर पे अपने फ्रिज में आप रख दें.
जी
है ना, वो कीपिंग भी उसका आसान है और उसके अलावा उसकी एक सिर्फ वन डोज है. तो वो दैट इज हाँ तो दैट इज गोना बी अगेन गेम चेंजर. तो लोग जो वो उसको सितंबर का कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि अगस्त तक सारे के सारे कैनेडियंस को
हो जाएगी, मिल जाएगी, एवरीबडी विल गेट इट। और वही जो जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा था कि हम सितंबर तक कर लेंगे, तो मुझे भी आपकी तरह लग रहा है कि जल्दी कर लेंगे,
जल्दी कर लेंगे।
और जो ऑन्टेरियो में रह रहे हैं उनको तो वैसे भी जल्दी मिल जाएगी, मुझे लगता है कि हम लोगों को जून जुलाई तक मिल जाएंगी सर।
यस
बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी, ट्रूडो साहब की जो गवर्नमेंट है वो जरा थोड़ी सी वो है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि जो कैनेडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर कुछ जो बाहर की कुछ जो कंट्रीज हैं कुछ वो करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ डेटा जो है बड़ी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है स्पेशली ये जो वैक्सीन से रिलेटेड है उसको कुछ चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये इन्होंने कहा है कि ये जो है ये एवरीथिंग कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो वो कह रहे हैं कि ये जो साइबर क्राइम्स जो हैं इसके ऊपर सीसेस जो है थोड़ी सी अपनी गिरफ्त जो है वो सख्त करता जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि ये जो थ्रेट है ये स्पेशली इंटरनेशनल टेररिज्म से जो रिलेटेड है उसकी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो यंगस्टर्स हैं खासतौर पर ये किसी भी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं, कोई भी फायर वॉल तोड़ लेते हैं और वो ले लेते हैं। तो ये आज जो है कंसर्न थोड़ा सा आया, तो वो कह रहे हैं कि लेकिन कैनेडा के अंदर लोगों को इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है स्टेप्स लिए हैं टू द एक्सटेंट कि अगर किसी के अकाउंट में कोई पैसे बहुत सारे आ गए हैं ना तो वो तक भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये पैसे का सोर्स और लिंक क्या है, ये कहां से आया है,
पूरी
तो
ट्रेल,
ये,
ट्रेल
ये पूरी वो ट्रेल जो है आपकी फिर वो आपको आपके पीछे लग जाते हैं और आपको करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये काफी बड़ा कंसर्न है आज, ये काफी आज जो है न्यूज़पेपर्स में ये खबर थी कि ये जो थेफ्ट हो रहे हैं स्पेशली ये वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, तो ये जो है इनका ख्याल करना जो है बड़ा जरूरी होगा। और हम तो यहां पर बात करते रहे हैं कि पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर जो है वो क्या बिल ब्लेयर साहब और क्या कहती रही हैं एजेंसीज हमारी, तो बहरहाल उसके ऊपर काम जो है वो हो रहा है। अच्छा जी, फोर्ड गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम एडिशनल 150 मिलियन डॉलर्स जो हैं देंगे ट्रांजिट सिस्टम को बचाने के लिए, क्योंकि क्या हुआ था माजिद भाई कि जब पेंडेमिक शुरू हुई थी तो लोगों ने सफर करना ही छोड़ दिया था और अभी तक भी लोग कम सफर कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं बसों के अंदर, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है उनके आवर्स कम हो गए हैं तो इसीलिए राइडरशिप भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो पहले जब ये फर्स्ट वेव आई थी तो उसके अंदर सेट किया गया था 660 मिलियन, जिसमें से कि टीटीसी को दिए गए थे 404 मिलियन, और अब वो कह रहे हैं कि अब भी जो सेकेंड ये जो आई है वेव उसके लिए 90 मिलियन डॉलर्स जो हैं इनको दिए जा सकते हैं, क्योंकि टीसीसी जो है उसने अभी कुछ ही दिनों में आपके पास रिपोर्ट हमारे पास शायद आ जाएगी कि वो बताने वाले हैं, ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 725 मिलियन के हमारे पास लॉसेस आ रहे हैं ड्यू टू रिडक्शन इन पैसेंजर ट्रैवल।
एग्जैक्ट,
तो उसकी वजह से जो इनको हेल्प करना जो है बहुत जरूरी है। अच्छा, आज जो एक सोर्स ऑफ कंसर्न ये भी था माजिद भाई कि ऑन्टेरियो ने अपनी जो वेबसाइट बुकिंग्स हैं कोविड 19 के वैक्सीनेशंस के लिए वो आज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इससे पहले कि दो हफ्ते पहले इन्होंने ये किया है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि सिस्टम रन कैसे कर रहा है। लेकिन आज बहुत सारी शिकायतें आई लोगों की कि जिन जिन इलाकों के अंदर ऑनलाइन बुकिंग्स के लिए लोगों को कहा गया था वहां पे लोग ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं कर पाए थे, तो मतलब है इसीलिए ये उन्होंने सिस्टम पहले से शुरू कर दिया है स्पेशली जो 80 एंड ओल्डर हैं। अच्छा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है जैसे फॉर एग्जांपल कि जो 80 एंड ओल्डर हैं वो शायद इतना टेक सेवी भी नहीं है, तो शायद उनको इसलिए भी प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें। वैसे तो अगर आप खोलें वो जो है वो ऑन्टेरियो का वो जो मिनिस्ट्री का वो उसमें सामने ही आपको लिखा हुआ नजर आएगा बुक एन अपॉइंटमेंट, लेकिन फिर भी लोगों को शायद या तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, तो लोगों ने आज काफी
देख लेना यॉर्क रीजन में ओवर 20,000
जी
फर्स्ट डे,
हाँ फर्स्ट डे
फर्स्ट फ्यू आवर्स में ओवर 20,000 ने बुक कराया है।
तो वो इसलिए मेरे ख्याल में या तो ओवरवेलम हो जाती है वेबसाइट या लोग टेक्स सेवी नहीं है जो 80 एंड ओल्डर है या फिर वाकई जनरली उसमें प्रॉब्लम है।
इसीलिए आज जो वहां के जो मेडिकल ऑफिसर है ना यॉर्क रीजन के, तो उन्होंने कहा क्योंकि आज यॉर्क रीजन में सबसे पहले उन्होंने इशू कर दिया उन्होंने ना, तो वो उनका कहना ये है कि भाई डोंट गेट पैनिकी अबाउट इट, आज फर्स्ट डे था एंड ओवर 20,000 पीपल हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर इट, एवरीबॉडी इज गोना गेट इट।
यस जी 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 बिल्कुल, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि ये फुल सिस्टम जब हम एनफोर्स करेंगे बाकी इलाकों के अंदर तो ये कैसे चलेगा, इसके अंदर जो लूप होल्स हैं हम अभी से जो है वो बंद करना चाहते हैं। अच्छा जनाब, आज एक रिपोर्ट सामने आई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो थी ये जो मिनिस्टर जो मैरिली फुलरटन थी, जो कि ये लॉन्ग टर्म केयर होम्स और इनको इनको जो ओवरसी करती हैं, इन्होंने उस रिपोर्ट में कहा था कि मैंने फोर्ड गवर्नमेंट को बताया था कि लॉन्ग टर्म होम्स के अंदर रिस्क ज्यादा है और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उस वक्त, चूंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक अभी तक अनाउंस नहीं हुआ था कोविड-19, तो ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने भी इसका ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो आज ऑन्टेरियो में जो ऑपोजिशन लीडर हैं एनडीपी की, एंड्रिया हॉर्वेथ, उन्होंने आज बहुत ज्यादा एतराज किया है मैरिली फुलटन पे, और उन्होंने कहा है कि अगर आप थोड़ा जोर दे देती हैं और अगर आप थोड़ा सा स्पीक आउट कर लेती हैं और आप अपनी गवर्नमेंट को कहती हैं कि नहीं, हमको जो है स्ट्रॉन्गर मेजर्स अभी से लेने की जरूरत है, तो लॉन्ग टर्म केयर के अंदर इतने ज्यादा जो है लोग ना मरते। अच्छा, अब जो मैरिली फुलटन है उनका कहना है कि मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूं, मैं कोई पेंडेमिक एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैंने ये खदशा तो जाहिर किया था ऑन्टेरियो गवर्नमेंट के पास, लेकिन मैंने उसको जोर नहीं दिया क्योंकि मैं भी जैसे कि बाकी की गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स पे बैठी हुई थी, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स। तो एज अ रिजल्ट मैंने उधर वो नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि एंड्रिया हॉर्वेथ ने आज उनको काफी क्रिटिसाइज किया है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो है जी, उसके अंदर जो प्रोविंशियल चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी, डॉक्टर हैदर मॉरिसन, उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग टुनाइट, आज मिडनाइट से 3 डेज का जो है लॉकडाउन शुरू किया जा रहा है यहां पे पीईआई के अंदर, इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि न्यू क्लस्टर्स ऑफ वायरस जो है वो सामने आ रहे हैं और इन क्लस्टर्स को का स्प्रेड जो है उसको रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है, विच मीन्स कि आज मिडनाइट से स्कूल्स और मोस्ट ऑफ द नॉन एसेंशियल बिजनेसेस जो हैं उनको थर्सडे तक क्लोज किया जाएगा और लोगों को कहा गया कि भाई आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। एक और आज बहुत बड़ा कंसर्न आया है कि आपको पता है कि लास्ट ईयर मार्च में कनेडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो पीआर अप्रूवल एप्लीकेशंस थी कि जो हमने की हैं उसके बाद से प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन जिनकी उस वक्त तक की थी तो उनका ख्याल था उन लोगों का कि अब जो है हमको हमारी चूंकि जो प्रोसेस हो गई एप्लीकेशन तो हम एज अ रिजल्ट लैंडिंग कर सकेंगे, अपने पीआर हमको कार्ड्स मिल सकेंगे। अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी, बच्चों को स्कूल से निकाल लिया और अपने बिजनेसेस बेच दिए, अपने घर बार बेच दिए, जमीनें प्रॉपर्टी सारा कुछ बेच दिया और उन्होंने कहा जी कि अब हमको जो है चूंकि आ गया है लेटर कि जी आपका पीआर कार्ड जो है वो आ रहा है आपके पास, और कुछ को मिल भी गया लेकिन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके। तो ये आज बड़ा कंसर्न लोगों का आया कि अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने अब इमिग्रेशन रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप कैनेडा जो है उनसे कहा है कि ये जो आपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसमें हमें काफी परेशानी आ रही है, तो हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब देखें इसके अंदर कुछ अगर दिनों में खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, आपको पता है कि टॉर स्टार कॉर्पोरेशन जो है बहुत बड़ी है, टोरंटो स्टार चलाते हैं और भी बहुत सारे पब्लिकेशन चलाते हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि उनके कुछ इस पेंडेमिक के बीच उनके कुछ अखबार वखबार चल नहीं रहे हैं। एज अ रिजल्ट दे हैव अनाउंस टूडे दैट दे आर गोइंग इन टू ऑनलाइन कैसीनो बेटिंग। और जब उनसे उनसे किसी ने पूछा कि फ्रॉम अ मीडिया हाउस टू दिस, तो उन्होंने कहा कि हाँ तो फिर क्या, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स।
एग्जैक्टली, दे हैव टू मेक मनी समहाउ। दे हैव द नो हाउ एंड दे हैव द फैसिलिटीज, सो दे सेड लेट्स यूज इट।
दे हैव ह्यूज फैसिलिटीज, तो उन्होंने कहा जी कि हमारी मर्जी, हम जो है वो इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए बिजनेसेस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आज उनकी वेबसाइट पर ये डिटेल्स दी। अब ये कब से शुरू करेंगे इसकी अभी डिटेल नहीं आई है, तो अब जब आएगी तो फिर वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बिजनेस, इनकी डिटेल्स आएंगी तो हम आपको शायद बता सकते हैं। अच्छा जी, हैमिल्टन के एरिया में एक होमिसाइड का केस था, तो पुलिस ने कहा कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हमको इतला मिली कि जो एरविन एवेन्यू है हिल्टन ड्राइव के पास, वहां पे कुछ शूटिंग वगैरह शायद हुई है। तो वहां पे जब गए तो वो कहने लगे कि हमको जी वहां पे एक औरत मिली थी जो कि गन शॉट्स जिसको थे, तो हमने उनको उठा के 26 ईयर्स की थी तो उसको हॉस्पिटल में रन किया। तो जब हमने वो एरिया को सर्च करना शुरू किया, पुलिस कहती है, तो वहां पे एक आदमी की भी डेथ हुई हुई थी, वो भी उसकी भी बॉडी थी। तो वो उस आदमी को अब जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है एज टाइलर प्रैट, और बीसी का ये आदमी था, 39 ईयर्स इसकी एज थी, और अब ये जो था बेचारा बीसी से जीटीए के अंदर अब शिफ्ट हो रहा था। देखिए मजे मौत किधर लेके जाती है। अच्छा, बेचारा बीसी में था, इधर सेटल होने के लिए आया।
हाँ, यहां पर अपना दाखिल होने के लिए आया
आ रहा था जीटीए में और उस बेचारे को गोली लग गई, उसकी डेथ हो गई। अच्छा जनाब, एक और आज हुआ है, पुलिस जो थी एक देवर एट द सीन ऑफ अ क्रैश, वेरी फेटल क्रैश, जो कि एक एसयूवी और एक ट्रैक्टर ट्रेलर के बीच में हुआ है ब्रांडफोर्ड के एरिया में। तो अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस इसके बारे में नहीं दे रही है, ना विक्टिम की ना कुछ, लेकिन उन्होंने पूरा वो एरिया सुबह के वक्त कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। और ये था एरिया काउंटी रोड 27 में ब्रैडफोर्ड के पास। तो अब जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी कोई तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। प्रिंस फिलिप कुछ ज्यादा ही बीमार चल रहे हैं माजिद भाई, एक तो उनकी एज भी 99 ईयर्स है, हालांकि उनको शॉट लगा है उसका, लेकिन उनको कुछ एक इन्फेक्शन जो हो गई है उसकी वजह से, पहले हमने बताया था,
आई डोंट थिंक इट हैज एनीथिंग टू डू विद कोविड,
नहीं नहीं नथिंग टू डू विद कोविड, वो सिर्फ एक इन्फेक्शन है उनको, क्योंकि वो कहते हैं जी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी। तो इनको पहले जो था इनको किंग एडवर्ड 7 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था, आज उनको कार्डियोलॉजी का एक जो हॉस्पिटल है वो उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, विच इज सेंट बर्थोलिम्यू हॉस्पिटल। तो वो कहते हैं कि ये अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, हालांकि वो जो ट्रीटमेंट है उसके लिए वो अच्छा शो कर रहे हैं, रिजल्ट्स शो कर रहे हैं उसके लिए, और लेकिन फिर भी उनको डॉक्टर्स जो हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी भी हार्ट के जो हैं इश्यूज हैं, तो इसलिए वो देखना चाहते हैं। पेरिस के अंदर जनाब आज कमाल हुआ है, और अगर हमारे भी मुल्क में ऐसा होना शुरू हो जाए माजिद भाई तो बड़ा ही अच्छा हो जाए।
अमेजिंग
अमेजिंग, एंड दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, फर्स्ट टाइम कि उन्होंने अपने जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे निकोलस सरकोजी, और उनकी एज है 66 ईयर्स और कोई इतने यंग भी नहीं है वो, उनको आज पूरी एक प्रोब के बाद उनको करप्शन चार्जेस के लिए जेल में भेजा गया है,
एक साल जेल।
उनको यह कहा गया है कि ठीक है अगर आप अपने घर में जेल काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, उसके लिए आप अपील करेंगे, लेकिन आप अपील करेंगे। तो ये आज उन्होंने कहा कि आपने मैजिस्ट्रेट को ब्राइब देने की कोशिश की, वो मैजिस्ट्रेट जो आपके लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन जो थी जिसके पास जा रही थी, आपने उसको कहा कि भाई पैसे ले लो और मुझे बताओ मेरे बारे में क्या पहले, और मुझे बताओ क्या आ रही है मेरे खिलाफ खबरें तुम्हारे पास,
ये तो आम है कई मुल्कों में, तो ये आम चीज है।
हाँ 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 बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो जी उन्होंने ऐसे कहा कि भाई ये आप करें, तो इसलिए आपको जो है आपने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है प्रोसीडिंग्स को, और इसलिए तो करप्शन चार्जेस और भी जो है उसके ऊपर भी है।
मगर ये कि डिसाइड हो गया है उनको सजा दे दी गई।
हाँ,
है
सजा तो दे दी है, एक साल प्रिजन में काटेंगे,
एक साल प्रिजन में रहना।
हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो अपील कर सकते हैं कि क्या वो घर में रहेंगे या प्रिजन में रहेंगे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि सजा उनको सुना दी गई है आज। अच्छा जी, आज बड़ी ही एक अजीब बात हुई है अमेरिका के अंदर, एक अमेरिकन फैमिली है और ये अमेरिकन बाप और बेटा है, माइकल टेलर और उसका बेटा पीटर, और ये जो थे ये बेसिकली जापानीज थे। तो जापान गवर्नमेंट जो थी बहुत अरसे से अमेरिकन गवर्नमेंट को कह रही थी, क्योंकि उनके बीच में एक्सट्रेडिशन का ट्रीटी है, तो वो कह रहे थे कि इन दोनों को जो है हमारे पास जापान में भेजो। अब इनके ऊपर क्या चार्जेस हैं, इनके ऊपर वो जो निसान मोटरको के चेयरमैन कार्लोस घोसन जो हैं, उन्होंने कहा कि वो जिस वक्त जो थे उनके ऊपर वो चल रहे थे, ट्रायल चल रहा था, तो आप मजिद भाई देखें इतना बड़ा ये आदमी घोसन, किसी जमाने में वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड भी होता था ये, उसको एक डब्बे के अंदर पैक करके उसको निकाल दिया वहां।
सही,
कैन यू इमेजिन मजिद भाई,
एंड वो पूरी सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई थी,
खड़ी हुई थी वहां पे, हैं
24 आवर्स सिक्योरिटी थी,
और डब्बे में बंद करके उसको ले गए, और पता नहीं कार्गो में फिर आगे उसको भेजा गए क्या किया। तो वो कहते हैं जी कि जापानीज कहते हैं जी कि इसने जापानीज कस्टडी में था और इन्होंने भगाया उसको यहां से, तो अब इसलिए इनको भेजे। तो अब अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो ये दोनों बाप बेटा भी बड़े पैसे वाले हैं, बाप जो है इन्होंने बड़ा फाइट किया अमेरिका के अंदर कि नहीं हम नहीं जापान जाना चाहते क्योंकि उनकी जेलें हमारे साथ बुरा सलूक करेंगी, लेकिन वो आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं आप इनको भेजेंगे वापस, इसलिए क्योंकि इन्होंने घोसन को स्मगल किया है आउट ऑफ जापान, तो ये सही नहीं है। तो ये बेचारे वैसे भी जेल में ही थे बोस्टन की, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं अब आप जापान जाएं। यूनाइटेड नेशंस जो है जी उसने आज अपील की है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है यमन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, तो आज उन्होंने जो है सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो हैं उन्होंने खास तौर पे ये जो बड़ी जो रिच नेशंस हैं उनको कहा है, अलॉन्ग विद स्वीडन स्विट्जरलैंड और ये जो थी जो कि को होस्ट कर रही थी इस कॉन्फ्रेंस को कंट्री, उनके वहां पे उन्होंने कहा है कि भाई हमको 3.85 बिलियन यूएस डॉलर्स चाहिए इस कंट्री के अंदर, अगर आप नहीं चाहते हैं कि बच्चे मरें, औरतें जो हैं वो बच्चे को पैदा करते हुए जो हैं उसमें उनकी डेथ हुए मोर्टेलिटी रेट ना रहे और बच्चे ना मरें, तो उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो अब ये देखना ये है कि अब ये रिच नेशंस जो हैं कितने पैसे ماجد بھائی اس کے لیے جمع کریں گی. اور یونائیٹڈ نیشنز کی ایک اور رپورٹ ہے ماجد بھائی, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ 2021 میں چونکہ ویکسینز آ گئی ہیں تو یہ پینڈیمک ختم ہو جائے گا, تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ ختم ہوئے گا, یہ ختم نہیں ہوئے گا, اب یہ کچھ عرصہ چلے گا.
اٹس لائک فلو
یس, ابھی یہ چلے گا. اچھا جناب, دو یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس ایکسپرٹس ہیں, اینڈ بوتھ آف دیم دے آر اسپیشل یونائٹڈ نیشنز رپورٹر آن پروموشن پروٹیکشن آف رائٹ ٹو فریڈم اینڈ اوپینین اینڈ ایکسپریشن. تو انہوں نے آج یونائٹڈ نیشنز کو کہا ہے کہ یہ جو رشیا کے اپوزیشن لیڈر الیگزی نیولنی ہیں, ان کو فوراً جو ہے رشیا کو کہا جائے کہ ان کو پرزن سے ریلیز کیا جائے. اور یہ جو دو یونائٹڈ نیشنز کے ایکسپرٹس ہیں ہیومن رائٹس کے, ان کا نام ہے ایگنس کیلاموئڈ اور دوسری جو ہیں ایرین خان ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے چونکہ یہ کرٹیسائز کرتا ہے اس کو رشین گورنمنٹ کو, کریملائن کو, تو اس لیے وہ ایک مثال اس کی بنانا چاہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو کہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے گا اس کا فیٹ جو ہے ایسا ہوئے گا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو جو ہے کنڈم کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کو فوراً جو ہے جیل سے آپ ریلیز کروائیں. تو اب رشیا تو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی بات نہیں ماننے والا, بارہ دیکھیں گے بھی کیا رہے گا. دیتے رہے آپ اس کو دھمکیاں, وہ کم ماننے والا ہے, وہ تو پوٹن صاحب نے جو کہہ دیا بس وہی ہوئے گا. تو بس یہ ایسے. اچھا جناب, آج ایک بہت بڑے امریکن ایکسپرٹ ہیں جن کی بہت کین آئے ہے. ظاہر ہے کہ امریکہ میں بہت سارے ایکسپرٹس کی کین آئے ہوتی ہے دو ملکوں پہ, رشیا اور چائنا پہ. تو یہ بہت بڑے لیکن یہ جو ہیں رائٹر ہیں, اسکالر ہیں, تو یہ کافی کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں رشیا اور چائنا کو. ان کا نام ہے ہینز کرسٹنسن. ان کا کہنا ہے کہ جو ہے چائنا اپنے نیوکلیئر مسلز جو ہیں ان کو کی کیپبلٹی جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور انڈر گراؤنڈ سے بھی یہ مسلز جو ہیں یہ رسپونڈ کر سکیں گے ٹو اینی نیوکلیئر اٹیک آن دیٹ کنٹری. اچھا, اب ان سے ہینز کرسٹنسن سے پوچھا گیا کہ بھئی چائنا کی تو کس کے ساتھ ایسی دشمنی ہے کہ وہ یہ مسلز یوز کرے گا, تو آپ امریکہ کا ذکر تو نہیں کہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے کوئی اس بات کا جواب نہیں دیا, لیکن جو ویسے چیزیں دنیا میں سیناریو پہ نظر آ رہی ہیں وہ یہ تو بالکل ہی نہیں ہے کہ چائنا اور یو ایس کے بیچ میں کبھی آرمڈ کانفلکٹ ہو سکتا ہے اور کبھی ان کے بیچ میں نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف کوشچن ہے, بالکل ہی آؤٹ آف کوشچن ہے. بہرحال یہ جو کرسٹنسن صاحب کی جو رپورٹ ہے یہ اس وقت آئی ہے, یہ بہت منی کھیز ہے اس لیے کیونکہ یہ اس وقت آئی ہے جبکہ چائنا اور یو ایس اے کے بیچ میں بہت زیادہ ٹینشنز چل رہی ہیں. تو اب اس رپورٹ کا کیا مطلب ہے یہ ہم آپ کو کچھ دنوں میں بتائیں گے. یہ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے امریکن ایڈمنسٹریشن میں, یہ ایسی خبریں آج کل کیوں آ رہی ہیں, یہ ہم آپ کو جلد بتائیں گے. اچھا جناب, یہ تو آفربا جی نے آپ کے ساتھ یہ خبر کی ہے کہ جو جمال خشوقجی کی جو فیانسے ہیں ہرٹز چنگیز, انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ جو رپورٹ آئی تھی ہم نے آپ کے ساتھ فرائیڈے کو کی تھی کہ ایک امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے کہ جس میں کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں اس کے کنگڈم آف سعودی عربیہ کے, انہوں نے یا تو آرڈر دیے تھے مارنے کے یا ان کو پکڑنے کے, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو سزا ضرور دینی چاہیے. اچھا, جو ہیٹس ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے, وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو کراؤن پرنس کو اگر آپ نے پنش نہ کیا اور اس کو سزا نہ دی, تو آپ یہ میسج بھیجنے کی کوشش کریں گے کہ جو پاورفل کلپرٹ ہے وہ تو چھوٹ جائے گا اور جو بیچارہ مرا ہوئے گا وہ پکڑا جائے گا. تو دس از اگینسٹ ہیومینٹی, تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کراؤن پرنس کو پکڑیں اور آپ اس کو جو ہے وہ سزا دیں. لیکن اس کے اندر جو سعودی گورنمنٹ ہے اس نے بالکل ڈینائی کیا ہے ان ایلیگیشنز کو. انہوں نے کہا ہے کہ ایم بی ایس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کلنگ کے ساتھ. یہ جو تھے واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھتے تھے, سعودی ویسے یہ تھے, ریزیڈنٹ تھے اور بہت زیادہ امریکن ریزیڈنٹ بٹ آف سعودی اوریجن, اور واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھتے تھے اور یہ کافی کرٹیسائز کرتے تھے جو سعودی گورنمنٹ ہوتی تھی. تو اب اس کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس لیے جس وقت یہ وہاں پہ سعودی امبیسی میں گئے اپنا ویزا لینے کے لیے استنبول میں, تو ان کو مار دیا گیا اور ڈسمیمبر کر دی تھی ان کی, تو لاش جو ہے بہت برے طریقے سے
ٹوٹلی پلانڈ.
ہاں ہاں, پلانڈ تھا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ہائی پروفائل جو ہے یہ بغیر پرنس کی اس سے نہیں ہو سکتا. تو اب وہ بہت زیادہ زور لگا رہی ہیں ان کی فینسی جو ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو آپ پکڑیں اور پنش کریں. لیکن ظاہر ہے کہ امریکہ کے سعودی کے ساتھ جو ہیں بڑے لمبے جو ہیں وہ بزنس کنسرن ڈیلز ہیں کافی بلینز آف ڈالرز کی, تو وہ اس کو ظاہر ہے ریٹارٹ نہیں کریں گے. तो मगर देखें अब क्या होता है। अच्छा जी, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नतन्याहू, उन्होंने आज बहुत ही एक एक्सप्लोसिव किस्म का एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में हमारा जो एक शिप था उसके ऊपर जो है इन्होंने अटैक्स किए हैं और इसमें एक्सप्लोजन जो है हुए हैं, तो वो बिल्कुल उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ये ईरान ने करवाया है। अच्छा, अब ईरान जो है उसने बिल्कुल डिनाई इसको किया है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है सईद खतीब जादे, उन्होंने कहा है कि हमारा इस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये जो एरिया है ये पर्शियन गल्फ का, ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का वो है क्योंकि हमारे अपनी भी ट्रेड जो है इधर से चलती है, तो हम कैसे इस एरिया का जो पीस है वो रेक कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स हमें आएंगी, क्योंकि अगर हम आप पे अटैक करेंगे तो आप हम पे फिर करेंगे और फिर वो ट्रेड जो पानी के थ्रू चलती है वो नहीं चल पाएगी। तो ये हमने नहीं किया, लेकिन नतन्याहू साहब जो है मानने की बिल्कुल वो उसमें नहीं है और वो कह रहे हैं कि जो है ईरान जो है इट इज माय ग्रेटेस्ट एनिमी। तो जो है उनसे पूछा गया कि फिर आप क्या करेंगे, आप रिटेलिएट करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम उनको फेंड ऑफ करेंगे जरूर। तो अब ये जरा थोड़ी सी खतरे की घंटी है रीजन के अंदर,
ये एक किस्म से ना ये टेस्ट होगा यूएस न्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन
के लिए,
उसके लिए कि अब वो आप क्या कदम उठाएंगे, आप किस तरफ
आप ठंडा करने की कोशिश करेंगे कि भड़काएंगे।
एग्जैक्टली, क्योंकि अब वहां पर तो अटैक हो चुका है, इसराइल कहता है कि अटैक हो गया और इन्हें ईरान ने किया है, अब अमेरिका पे है कि अमेरिका उसका क्या जवाब देगा, क्या तो वो इसराइल के फेवर में आके अमेरिका पे अटैक करेगा या इसराइल को कहेगा कि भाई तुम जाके अपना अटैक करके तुम अपना बदला वापस लो।
और मजे भाई अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें ना, अभी आप देखें कि अभी संडे को ही कल रात को सीरिया ने यह कहा है कि इसराइल ने डमास्कस के ऊपर जो है हमले किए हैं, राइट आफ्टर दैट टुडे संडे को उन्होंने कहा है, आज इन्होंने ये कह दिया है कि हमारे शिप के ऊपर ईरान ने किया है। तो मतलब ये चीजें हौले हौले जो है ना वो जरा काफी हाइटेंड टेंशन,
नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट है यू नो कि व्हिच वे ही इज गोना गो, इज ही द एलाय फॉर
हाउ विल दे हैंडल सिचुएशन, बेसिकली हाउ विल दे हैंडल सिचुएशन। हाँ जी, वैसे जी अच्छा जी, द प्रिंट की आज एक स्टोरी है और ये एंड दिस इज रिटन बाय टी एन नीनन और इसके अंदर जो हेडलाइन है उनकी जो आर्टिकल है उसका है एज इंडिया रिटर्न्स टू पॉजिटिव ग्रोथ, क्योंकि इंडिया अब इंच कर रहा है थोड़ी थोड़ी ग्रोथ की तरफ, एज इंडिया रिटर्न्स टू पॉजिटिव ग्रोथ इट मस्ट थिंक व्हाई इट कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी लाइक चाइना हैज। और ये पूरी हमने रिपोर्ट यहां पे सुनाई थी कैसे चाइना ने जो है मिलियंस ऑफ लोगों को जो है पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी से निकाला है। अच्छा, अब इसके अंदर ये बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है एंड इट्स अ ह्यूज एनालिटिकल पीस। वो कहते हैं जी कि इंडिया जो है अब बहुत एटलीस्ट 20 साल चाइना से पीछे रह गया है। वो कहते हैं जी एक जमाना ऐसा था कि जिस वक्त दोनों जो है वो कंपेयर किए जा सकते थे, एक ही लेवल पे थे, इनका जो पर कैपिटा इनकम था वो भी एक था। अब जबकि चाइना ने तकरीबन 850 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से ऊपर लेकर ये आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब उस मुल्क में चाइना में सिर्फ 10 में से एक आदमी पुअर है, वेयर एज इंडिया में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है एट अ हायर लेवल वो अंडर पॉवर्टी है और लोअर लेवल के अंदर 10% लोग जो हैं वो अंडर पॉवर्टी हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर। फिर वो कहते हैं जी कि ये जो हमारी चाइना की जो पर कैपिटा इनकम थी वो अब इंडिया से 2.7 टाइम्स ज्यादा ऊपर चली गई है,
सही।
जो कि थी किसी जमाने में एक उसके लेवल पे। फिर वो कहते हैं जी कि अब जो इंडिया का जो ह्यूमन राइट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आया है जिसमें कि आप चीजें देखते हैं इनकम हेल्थ एजुकेशन पैरामीटर्स, उसमें भी चाइना इंडिया से 15 साल आगे चला गया है। फिर वो कहते हैं जी यूनाइटेड नेशंस का जो इंडेक्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसके अंदर वो 17 पैरामीटर्स लेते हैं, एजुकेशन, औरतों का वो मोर्टेलिटी रेट और ऑल दीज थिंग्स,
एजुकेशन
वगैरह, उसमें भी जो है जो चाइना है वो 15 साल आगे चला गया है इंडिया से। तो वो कहते हैं कि एज अ रिजल्ट वो जो हमारा ड्रीम था ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो इंडिया कभी था वो अब वैसे नहीं चलेगा, अब चाइना जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी चलेगा। तो आज ये बहुत एक आई ओपनर किस्म की रिपोर्ट है, इट्स अ ह्यूज रिपोर्ट, और भी बहुत सारे
पूरे पूरी दुनिया को जो है स्पेशली वेस्ट को एंड अमेरिका को सबसे बड़ा थ्रेट यही है, सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि चाइना जिस तरीके से एडवांस कर रहा है हर फील्ड में, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज हेल्थ केयर, हर शोबे में आप देख लें उसमें जिस तरीके से चाइना एडवांस कर रहा है, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये तो दे आर डेफिनेटली द फास्टेस्ट।
जी जी, तो इसीलिए वो जो आज की जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई है वो मिस्टर हैंस की जो है, कर्सन सेन की जो रिपोर्ट है वो इसी सिलसिले की है कि अब चाइना के इतने रिसोर्सेज बढ़ गए हैं और इतनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो अपनी बढ़ा सकता है, तो इट इज अ सोर्स ऑफ कंसर्न, क्योंकि जो है वो बहुत माइटी होता चला जा रहा
है। इट इज टू फार अवे, यहाँ ऐसा उतना कि जहां पर अगर लैटिन अमेरिका में चाइना होता तो देन यू कैन टॉक अबाउट इट, तो इससे पहले भी कभी ना अमेरिका में कभी जंग हुई है ना कनाडा में कभी जंग हुई है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो वो नहीं, वो मैं बता रहा हूं कि उस वक्त कभी कभी यहां पर कभी जंग नहीं हुई है, और ये हमेशा दूसरे के लैंड पे जाके जंग करते हैं। तो अब चाइना जितना भी हो जाए मगर वो उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा,
नहीं फर्क पड़ता। हाँ जी, अच्छा जी, इंडिया के अंदर भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं राकेश टिकैत, उनका आज कहना है कि ये जो 15-20 दिन से गवर्नमेंट जो है सेंटर की गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है फार्मर्स के मसले पे, तो ये मुझे कुछ तूफान आता हुआ नजर आ रहा है, ये कुछ प्लान कर रहे हैं फार्मर्स के अगेंस्ट। तो आज उन्होंने बड़ी धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि फार्मर्स जो है ना तो अपने एजुटेशन से पीछे हटेंगे ना अपनी क्रॉप्स को उगाना छोड़ेंगे, दोनों फ्रंट्स पे वो लड़ते रहेंगे, और अगर गवर्नमेंट को हमसे बात करनी है तो अब गवर्नमेंट को हमारे पास आना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं है उनके पास बात करने के लिए। तो जब उनसे पूछा गया कि ये जो 26 जनवरी को वो जो रिपब्लिक डे पे इतनी वो हुई, तो वो तुम किसानों ने नहीं की, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं की, ये सेंटर ने की, शैतानी है ये, उन्होंने ट्रबल
काम काम बिफोर द स्टॉर्म,
या
नो दैट्स व्हाट दे कॉल इट, काम बिफोर द स्टॉर्म,
या। तो वही वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये किसी तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ये जो सेनेट इलेक्शन है माजिद भाई, इनका तो आपने जिक्र किया, मैं थोड़ी सी इसमें चीज ऐड करूंगी कि 5-member लार्जर बेंच ऑफ एपेक्स कोर्ट था ये, विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, और इसके अंदर थे जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बुंदियाल, और जस्टिस इजाज उल एहसान, और जस्टिस याया अफरीदी। तो जस्टिस याया अफरीदी सिर्फ जो थे उन्होंने इनके साथ मेजोरिटी में वो वोट नहीं डाला, उन्होंने डिसएग्री किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये जो ओपन बैलेट्स हैं ये होने चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सेनेट के जो पोल्स हैं वो ओपन बैलेट में नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं होने चाहिए, अफरीदी साहब ने कहा क्यों नहीं होने चाहिए, होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले, लेकिन ये जो लार्जर बेंच था इसने कहा कि नहीं नहीं होने चाहिए, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की यह मर्जी है कि वो क्या स्टेप्स लेते हैं ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए और ये देखने के लिए कि वोटिंग जो है वो कब कहां तक जो है वो सीक्रेट रह सकती है, तो ये उसका काम है, तो उनको ये आप डिसाइड करने दें। ये भी जिक्र किया है अरफाबाजी ने कि एक ट्रेन चलने वाली है 4 मार्च को टर्की ईरान और पाकिस्तान के बीच में, तो इसका आज जो जिक्र है मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसका जिक्र आज पाकिस्तान में जो रेलवेज के मिनिस्टर हैं आजम खान सवाती साहब, उन्होंने आज किया है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और रेलवेज जो हैं कोऑर्डिनेट कर रही हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटेरिएट के साथ, और ये जो हैं काम कर रहे हैं तेहरान और इस्तांबुल के साथ भी, तो ये जो हैं अब हमारी जो है ट्रेन इस तरह से चला करेंगी और इसके अंदर हमारा ट्रेड और कोऑपरेशन और वो जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। तो माजिद भाई बड़ी जबरदस्त है ये, वन डे ट्रिप इज 12 डेज, तो विच इज वेरी नाइस, ऐसे तेहरान ऐसे ईरान से तुर्की से गुजरती हुई ऐसे जाएगी, तो ब्यूटीफुल।
अगेन दिस इज अ थ्रेट, दिस इज अ थ्रेट फॉर वेस्टर्न्स, कि भाई अगर एक दफा जब आरडीसी बनी थी तो वो वही चीज जो है दोबारा से ईरान, और ईरान और तुर्की तो वैसे ही इनके दुश्मन हैं आजकल के ईरान और तुर्की
के सिनेरियो में, यस एब्सोल्युटली।
तो ईरान तुर्की एंड पाकिस्तान अगर वो, और जब पाकिस्तान आ रहा है तो उसके साथ साथ उसके राइट हैंड पे कौन है, चाइना,
या या या
तो ये बहुत बड़ा
थ्रेट है। बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे ना मौजूद, बाकी लोगों के लिए श्रीलंका आएगा, नेपाल आएगा, बांग्लादेश आएगा, फिर अफगानिस्तान आएगा, बहुत सारे लोग फिर और भी जो है तुर्कमेनिस्तान तक, क्योंकि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान तक भी तो वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो फिर ये लोग भी इनकी भी ट्रेड जो है वो शुरू हो जाएगी, तो ये रीजन के अंदर तो बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, तो जो अगर जो इनको ज्वाइन नहीं करता वो फिर पीछे भी रह जाएगा, तो इसलिए वो चाहते
बहुत सारे मुल्कों को जो है परेशानी लगी,
परेशानी है
और हकीकत की परेशानी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू नो,
क्योंकि वो चाहते नहीं है पाकिस्तान प्रॉस्पर करे ना जी,
नॉट ओनली पाकिस्तान, पाकिस्तान ईरान द होल रीजन इज गोना प्रॉस्पर, एंड वो चाहते हैं कि ये हमेशा हमारे रोटियों पे पले।
तो इसलिए तो ये परेशानी है उनके लिए जनाब। बहरहाल जी, अमरीका से बड़ी ताकत जो है वो अल्लाह की है। आपको पता है कि जॉन लेनन कितने ह्यूज सिंगर थे बीटल्स के, और उन्होंने कहा था कि मुझे तो अब मेरी जो पॉपुलैरिटी और मेरा जो है बड़े उसके अंदर, अब तो मुझे खुदा भी नहीं रोक सकता। फिर क्या हुआ माजिद भाई, एक बंदे ने उसको गोलियां मारी, इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर को 26 गोलियां मारी और कोई उसको बचाने वाला नहीं था।
न्यूयॉर्क,
या सो ये बात कर देनी कि हम खुदा हैं जमीन पे, फिरौन नहीं रहे, जुल्फकार अली भुट्टो नहीं रहा, शाह ईरान नहीं रहा, तो ये क्या चीजें हैं माजिद,
exactly.
ये क्या चीजें हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज। हरभजन सिंह जो हैं, जो कि एक क्रिकेटर हैं जनाब, उन्होंने आज एक टीजर जो है वो अपनी उसके ऊपर ट्विटर के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि वो अब एक फिल्म में काम करने लगे और उस फिल्म का नाम है फ्रेंडशिप। तो जनाब अब फिल्म में नजर आएंगे पजी पाजी, तो जनाब आप लोग अब खुश हो जाएंगे।
पहले भी
एक आध फिल्म में आए हैं ये। हाँ जी, तो अब ये दूसरी दो तीसरी शायद फिल्म है इनकी, तो उस पे आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि एंजॉय इट गाइस, तो पजी पाजी आपको अगर पसंद है तो आपको नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन साहब जो है 78 ईयर्स उनकी एज है जनाब, और काफी तकलीफ में आजकल वो कह रहे थे कि मुझे ना तो दिखाई दे रहा है ना मैं पढ़ सक रहा हूं। उनकी एक